डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 26 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 26 बुद्धि भजन शैली है। स्तोत्र के संपादन के लिए हमें तैयार करें। मैं स्तोत्रों की एक अन्य शैली अर्थात बुद्धि स्तोत्र को देखना चाहता हूं। हम पहले ही दो बुद्धि स्तोत्र देख चुके हैं। जब हमने अलंकार पर चर्चा की और मैंने परहेज के महत्व पर चर्चा की तो हमने बुद्धि भजन 49 को देखा। जब मैंने धर्मविधि और धर्मविधि की भूमिका और प्रतीकवाद पर ध्यान दिया तो धर्मविधि एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से भगवान अपने उपासकों से संवाद करते हैं। मैंने भजन 73 को देखा जब भजनहार भगवान के मंदिर में गया और उसने कल्पना से वहां क्या देखा होगा। यदि हम बुद्धि सामग्री को मोटे तौर पर देखें तो मैं जिस भजन पर ध्यान केंद्रित करूंगा वह भजन 19 है। लेकिन सबसे पहले परिचय की कुछ बातें। सबसे पहले ज्ञान से हमारा क्या तात्पर्य है। हिब्रू शब्द होकमा है। इस शब्द का अर्थ है कुशल होना। इसमें सभी प्रकार के कौशल का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है मैं कहता हूं यह होकमा आमतौर पर अनुवादित ज्ञान उत्कृष्ट समझ कौशल विशेषज्ञता को दर्शाता है। जब मैंने नीतिवचन की पुस्तक पढ़ाई तो हमने इसका विस्तार किया और यह तकनीकी और कलात्मक कौशल को संदर्भित करता है, जैसे कि बसलेल और अहोलियाब जिन्होंने तंबू का निर्माण किया या हीराम की तरह जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया। इसमें मिस्र के जादूगरों के कौशल की जादुई कला का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपके पास व्यवस्था विवरण 1 है, जहां मूसा को बुद्धिमान विवेकशील व्यक्तियों को नियुक्त करना था जो राष्ट्र पर शासन करेंगे। इसका उपयोग कूटनीति के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता है। ज्ञान साहित्य में उदाहरण के लिए अय्यूब नीतिवचन सभोपदेशक और चयनित स्तोत्रों में जैसे 49 और भविष्यवाणी में ज्ञान शाश्वत जीवन के तरीके से जीने के कौशल को संदर्भित करता है। इसमें सामाजिक कौशल शामिल हैं अर्थात ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लेकिन यह जिस तरह से जी रहा है ज्ञान का विशिष्ट मुख्य रूपक शाश्वत जीवन का तरीका है। चूंकि बुद्धि एक तटस्थ शब्द है इसका प्रयोग बुराई के लिए किया जा सकता है। सर्प भी सूक्ष्म है। ज्ञान अरुम चालाक या सूक्ष्म के लिए शब्दों में से एक। इसकी रक्षा के लिए इसे धार्मिकता के साथ सहसंबद्ध शब्द के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। और इसलिए जब यह ज्ञान की बात करता है तो उनका मतलब धार्मिकता भी होता है और ये शब्द परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए मैं एक सहसंबंधी शब्द की तुलना उपराष्ट्रपति से करता हूं जिसके दो अलग अलग पद हैं। वह सीनेट के अध्यक्ष भी हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें राष्ट्रपति के लिए भी खड़ा होना होगा। वे बहुत भिन्न कार्य हैं। लेकिन यदि आप एक हैं, यदि आप सीनेट के अध्यक्ष हैं तो आप उपराष्ट्रपति भी हैं जो राष्ट्रपति के स्थान पर खड़े होंगे। इसलिए यदि आपके पास बुद्धि है तो आपके पास धार्मिकता है। यदि तुम्हारे पास धार्मिकता है तो तुम्हारे पास बुद्धि है। तो ये दोनों शब्द एक साथ चलते हैं। यह धार्मिकता के साथ सहसंबद्ध है। ज्ञान साहित्य का स्वरूप उपदेश एवं उपदेश है। जब आप परीक्षण का सामना कर रहे हो तो यह सकारात्मक हो सकता है और चेतावनी के रूप में यह नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक चेतावनियां इस प्रकार होंगी जैसे कि प्रभु पर भरोसा करना, प्रभु का भय मानना, अच्छा करना, पाप से बचना, उचित समय पर पाप स्वीकार करना या अपनी जीभ पर ध्यान देना। बस इतना ही निर्देश है। यह चेतावनी है। यह सिखा रहा है। इसलिए आमतौर पर भी इन चेतावनियों में एक सुंदर वादा जोड़ा जाता है, कभी कभी इसके साथ पेश किया जाता है। नकारात्मक रूप से यह थियोडिसी के संबंध में एक नकारात्मक चेतावनी भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप विजय का सामना कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि बुराई प्रबल है और विजय हो रही है। यह एक नकारात्मक चेतावनी है कि भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त न हो, जो आपको शाश्वत जीवन के रास्ते से बाहर रहने के लिए प्रलोभित करेगी। ये अय्यूब और सभोपदेशक की चिंताएं हैं। इसलिए यह दुर्भाग्य से असंतुष्ट होने, धनी अधर्मी लोगों द्वारा उकसाए जाने, धन पर आश्चर्य करने या उन पर भरोसा करने के विरुद्ध है। हमने भजन 73 और भजन 49 में इस तरह की बुद्धिमत्ता को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। भजन 49 में, जब आप दुष्टों की समृद्धि देखते हैं तो अभिभूत और परेशान न हो, यह वहां न जाने की चेतावनी है। और उसके बाद उन्हें मना कर दिया जाता है, वे अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। यह शाश्वत है, वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह उस धर्मी के विपरीत एक शाश्वत मृत्यु है जो सुबह उन पर शासन करेगा। हमने इसे भजन 73 में देखा, जब उसने दुष्टों की समृद्धि से ईर्ष्या की, तब वह यहोवा के मंदिर में गया और उसे शिक्षा दी गई। हमने उस समय कहा था कि उस भजन से उसे जो सीखना था वह यह था कि उसे अपनी समस्या से ईश्वर को परिभाषित नहीं करना था, बल्कि जो मैं कहने नहीं गया वह यह था कि वह अपनी समस्या को ईश्वर द्वारा परिभाषित करे। तो पहले 14 छंदों में उनका प्रलोभन अपनी समस्या से ईश्वर को परिभाषित करने का है, और वह दुष्टों की समृद्धि और अपने दोहक को देखकर इसे समझ नहीं सकता। वह इसे इस स्वीकारोक्ति के साथ जोड़ नहीं सका कि ईश्वर अच्छा है। तो उसकी समस्या यह थी कि वह ईश्वर को अच्छे के रूप में परिभाषित कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी समस्या से शुरुआत की थी। परंतु जब वह परमेश्वर के मंदिर में गया, तब उसने परमेश्वर के द्वारा अपनी समस्या बताई। वहां उन्होंने भगवान की जीत देखी। उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा और उसने देखा कि परमेश्वर दुष्टों को नष्ट कर देगा। तो अब उन्होंने समस्या को भगवान द्वारा परिभाषित किया। मुझे लगता है कि यह उन सबको में से एक है जो हम भजन 73 से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं यहां भी कहता हूं, यही कारण है कि मैंने टोरा भजन के साथ साथ ज्ञान भजन को भी एक साथ रखा है, क्योंकि टोरा भजन अप्रत्यक्ष रूप से हमें टोरा रखने की सलाह दे रहे हैं और अनुदेश रखें। तो भजन एक एक तोराह भजन है, लेकिन यह तोराह रखने के पुरस्कारों के बारे में बात करता है। यह अनंत जीवन के पत्तों वाले एक पेड़ की तरह का प्रतिफल है जो अपने मौसम में फल देता है, पहला भजन। इसलिए मैं यहां टोरा को एक साथ रखता हूं, जो कि कैटेचेटिकल निर्देश है। तो स्तोत्र में मोज़ेक कानून या बुद्धिमानों की बातों का उल्लेख हो सकता है। मैं नकारात्मक रूप से कहता हूं, यह एक चेतावनी भी हो सकती है कि दुष्टों के कारण परेशान न हो या दुष्टों से ईर्ष्या न करें इत्यादि। मैं यह छोड़ रहा हूं कि वे कैसे शुरू होते हैं, क्योंकि वे वास्तव में विभिन्न तरीकों से शुरू होते हैं। गुंकेल ने इसे इसकी शुरुआत आदि के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे यह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगता है। तो मैं इसे छोड़ने जा रहा हूं। पृष्ठ 326 पर मैं उन भजनों को वर्गीकृत करता हूं जो ज्ञान से संबंधित हैं, और टोरा भजन भजन 1.19 और 1.19 हैं। जो भजन पूरी तरह से सकारात्मक चेतावनी है वह भजन 78 है, और यहां यह इज़राइल के इतिहास की कथा के माध्यम से शिक्षा दी गई है। भजन 112 एक सकारात्मक चेतावनी है। तो यह 127, 133 है। और नकारात्मक चेतावनी वह है जो हमने पहले भजन में देखी थी। ठीक है, मैंने भजन 37 पर चर्चा नहीं की, लेकिन यह वही बात है 49 और 73। तो अब मैं एक टोरा भजन को देखना चाहता हूँ। यह वास्तव में टोरा की प्रशंसा में है, लेकिन यह ऋषि के संदर्भ में सोचता है, और यह टोरा को रखने के लिए एक प्रोत्साहन है। सबसे पहले आइए देखें कि यह स्तोत्र समग्र रूप से स्तोत्र के भीतर कैसे कार्य करता है। यह माना जाता है कि भजन 1 और 2 पुस्तक का परिचय है, 3, 4, 5, 6, 7। वे भजन ज्यादातर डेविड के विलाप हैं। और फिर आपको भजन 8 में मनुष्य की सर्वोच्च स्थिति के बारे में एक प्रशंसा भजन मिलता है, जो सब कुछ अपने पैरों के नीचे ले आएगा। फिर आपको 9, 10, 11, 12, 13 और अन्य 5 भजन मिलते हैं। और फिर आपको 14 मिलता है, जो मनुष्य और उसके भ्रष्टाचार और उसकी भ्रष्टता का वर्णन करता है। यह मानव जाति को उसके सबसे बुरे रूप में देखता है। वह संपूर्ण कोष है। तो आपको एक परिचय मिल गया है, आपको 2 भजनों के साथ 3 से 14 तक मिल गया है, जैसे 5 के बाद 8 और 5 के बाद 14। और अब आपके पास 15 से 24 हैं, जो कि क्रमबद्ध रूप से संरचित हैं। तो 15 एक प्रवेश द्वार भजन है, जो प्रभु की पहाड़ी पर चढ़ सकता है। हम इसे भजन 24 में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, कौन प्रभु की पहाड़ी पर चढ़ सकता है। भजन 16 जिसे हमने अभी देखा मूलतः विश्वास का गीत है, और इसे भजन 23 के साथ जोड़ा गया है। यह 24 से पहले वाला जाहिर है प्रसिद्ध चरवाहा भजन है, जो विश्वास का गीत है। देखिए भजन 17 मदद के लिए एक प्रार्थना है, और यह भजन 22 से मेल खाता है, जो मृत्यु से मुक्ति पाने में मदद के लिए एक प्रार्थना है। भजन 18 एक शाही भजन है, जब उसने अपने सभी शत्रुओं को हरा दिया था। यह एक शाही स्तोत्र है। भजन 20 और 21 एक शाही जोड़ी है। 20 यह राजा के लिए युद्ध में जाने के लिथे और राजा के लिथे प्रार्थना है, और 21 युद्ध से वापसी है। जहां चट्टान टकराती है वह भजन 19 है। यही धुरी है। भजन 19 एक तोराह भजन है। इसे इस तरह से संपादित किया गया है कि चूंकि भजन एक तोराह भजन है, जो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर साल्टर का परिचय देता है, हमें चेतावनी देने वाला एक भजन मिलता है, और इसके बीच में टोरा की प्रशंसा होती है। खैर, उस पृष्ठभूमि के साथ आइए भजन पर एक नजर डालें, और हम अनुवाद से शुरुआत करेंगे। यह डेविड का एक भजन है। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का बखान करता है। मुझे आकाश विशेष रूप से पसंद नहीं है, यह आकाश के लिए शब्द है। पुराने नियम में वे जिसे हम आकाश कहते हैं उसे गुंबद के रूप में देखते थे। जेरोम का किसी दृढ़ आकाश गुंबद से यही मतलब था। उन्होंने सोचा कि यह बिल्कुल साफ है और इसके ऊपर पानी है। ऊपर का आकाश उसकी करतूत की घोषणा करता है। दिन से दिन तक वाणी प्रकट होती है और रात से रात तक ज्ञान प्रकट होता है। कोई वास्तविक बोलना नहीं है, कोई वास्तविक शब्द नहीं है, और किसका वह स्वर्ग है, यह ब्रैकेट किसकी आवाज के आसपास होना चाहिए। कोष्ठक आकाश के चारों ओर होना चाहिए। इसका मतलब है जिसकी आवाज स्वर्ग तक वापस जाती है। तो किसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यह डेसीबल में नहीं है, ध्वनि डेसीबल है। फिर भी उनकी आवाज यद्यपि मौन है पूरी पृथ्वी पर, और उनके शब्द दुनिया के अंत तक जाते हैं। उनमें उसने सूर्य के लिथे एक तंबू भेजा है, जो दूल्हे की नाई अपके कक्ष से निकलता है, और बलवंत पुरुष की नाई आनंद के मारे अपनी ओर दौड़ता है। उसका उदय आकाश के अंत से है और उसका चक्कर उनके अंत तक है, और इसकी गर्मी से कुछ भी छिपा नहीं है। अब वह कानून की तारीफ करते हैं। भगवान का नियम परिपूर्ण है, आत्मा को पुनर्जीवित करता है। प्रभु की गवाही निश्चित है, जो सरल को बुद्धिमान बनाती है। प्रभु के उपदेश सही हैं, हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं शुद्ध हैं, आंखों को आलोकित करती हैं। प्रभु का भय शुद्ध, सदैव कायम रहने वाला है। प्रभु के नियम सर्वथा सत्य और धर्मपूर्ण हैं। वे सोने से भी अधिक चाहने योग्य हैं, वरन बहुत कुंदन से भी और मधु और छत्ते की टपकन से भी अधिक मधुर हैं। इसके अलावा उनके द्वारा आपके दास को चेतावनी दी गई है और उनका पालन करने पर बड़ा प्रतिफल है। उसकी गलतियां कौन पहचान सकता है? छुपे हुए दोषों से मुझे निर्दोष घोषित करो। अपने सेवक को भी उद्दंड या ढीठ लोगों से दूर रखो। वे मुझ पर प्रभुता न करें, तब मैं बड़े अपराध के लिए निर्दोष और निर्दोष ठहरूंगा। हे प्रभु, मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तुम्हारी दृष्टि में स्वीकार्य हो। यहाँ केवल कुछ टिप्पणियां हैं। जब यह श्लोक 8 में कहता है, जब वह कहता है प्रभु के उपदेश हैं सही, हिब्रू शब्द यशार है और इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से सीधे हैं, वे बिना किसी दोष के हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर अक्ष पर किया जा सकता है। यह बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई मोड़ नहीं है, कोई झुकना नहीं है, और एक क्षैतिज अक्ष पर वहां नहीं, फिर कोई उभार नहीं है। यह एकदम सही है, यह चिकना है, यह सीधा है, यह सीधा है। अधिकार का यही मतलब है। प्रभु का भय, आपने देखा कि इस भजन में ज्ञान संबंधी शब्द हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका उपयोग भी ज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप वहां श्लोक 7 में पाते हैं, प्रभु का भय समान है, यह प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की गवाही, प्रभु के उपदेशों, प्रभु की आज्ञाओं के समान है। पद 9 बी में प्रभु के नियम और तुम्हें प्रभु का भय है। प्रभु का भय हमेशा ईश्वर की पवित्र नैतिक इच्छा के इस उद्देश्यपूर्ण रहस्योद्घाटन पर जोर देता है। प्रभु के भय का अर्थ है कि आप उस रहस्योद्घाटन के प्रति समर्पण करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर से डरते हैं जो जीवन और मृत्यु को अपने हाथों में रखता है। यह उसके कानून के अनुरूप है, और हम जानते हैं कि इसे आज मसीह के माध्यम से और आत्मा के माध्यम से महसूस किया जाना है। इसके अनुरूप होना ही शाश्वत जीवन है, इसे अस्वीकार करना शाश्वत मृत्यु है। यह प्रभु का भय है। तो प्रभु का भय मोज़ेक टोरा की शिक्षाओं, सिद्धांतों और उसके प्रति आज्ञाकारिता की तरह यह वस्तुनिष्ठ रहस्योद्घाटन है, क्योंकि आप मानते हैं कि ईश्वर का अर्थ वही है जो वह कहता है, और वह कहता है ठीक है, वह वही कहता है जो उसका मतलब है, और उसका वही मतलब होता है जो वह कहता है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है, और आप भगवान को विस्मय में रखते हैं। इस तरह मैं प्रभु के भय को समझता हूँ। यहाँ अद्वितीय अनुवादों में से एक, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए यहाँ अद्वितीय हो सकता है, जिस तरह से मैंने अनुवाद किया है, अपने नौकर को भी ढीठ से दूर रखो। आम तौर पर इसका अनुवाद अभिमानपूर्ण पापों से किया जाता है। हिब्रू शब्द दीन है, इसलिए मुझे उस अनुवाद का बचाव करने की जरूरत है। अर्थात वह कह रहा है, अपने दास को ढीठ मनुष्यों से बचाकर रखो। मैं कहता हूं कि परंपरागत रूप से इसका अनुवाद अभिमानपूर्ण पापों के रूप में किया जाता है। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि वह श्लोक 12 में मुझे छुपे हुए दोषों से निर्दोष घोषित करने की बात कर रहा है, जिनसे मैं अनजान हूं। इसके विपरीत वे होंगे जिनके बारे में मुझे पता है और मैं जानबूझकर उन्हें रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसी कारण छुपे हुए पापों के विपरीत अभिमानपूर्ण पापों का अनुवाद हुआ। मैं जो शब्द कहता हूँ दीम शब्द का मूल जादे हैं। नीतिवचन 21:24 के अलावा यह सदैव बहुवचन में 13 बार आता है। व्याकरणिक शब्दों में कहें तो इस पुल्लिंग मूलवाचक विशेषण का प्रयोग विशेषण के रूप में ढीठ ढीठ जैसे संज्ञा के रूप में किया जाता है। अन्यत्र इसका प्रयोग कई प्रकार के ढीठ लोगों के साथ किया जाता है। यहां बताया गया है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जो लोग ईश्वर को चुनौती देते हैं, मलाकी 3:15 जो भजनहार 86:15 पर आक्रमण करते हैं, यिर्मयाह की भविष्यवाणी को अस्वीकार करते हैं, यिर्मयाह 43:2 बिना रोकटोक के पवित्र लोगों का उपहास करते हैं, 119:51 झूठ गढ़ते हैं, 119:69 गड्ढे खोदते हैं, 119:85 भजनहार प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें लज्जित करे 119:78 और उन्हें उस पर अत्याचार न करने दे 119:22। कहा जाता है कि मैं उन्हें डांटूंगा 119:21 और उनका अहंकार बंद कर दूंगा। यशाया 13:11 मार्क 4:21 की पुष्टि करें। एनआईवी इसका अनुवाद घमंडी और अभिमानी व्यक्ति के रूप में करता है। माँ का उसका नाम है। वह ढीठ क्रोध के साथ व्यवहार करता है। यहाँ एनआईवी एकवचन जेड का अनुवाद गर्व के रूप में करता है। जादिन की इन 12 अन्य घटनाओं के प्रकाश में मुझे लगता है निष्कर्ष न केवल निकाला जा सकता है बल्कि निकाला जाना चाहिए कि जादिन उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने आत्ममहत्व और अपर्याप्तता के बारे में अतिरंजित और गर्वित राय से दोनों की उपेक्षा करते हैं, बुद्धिमान और सत्य प्रकट करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं शब्दकोश पर निर्भर नहीं हूँ, मैं उनकी सहमति पर निर्भर हूँ। मैं अभी सभी उपयोगों से गुजरा हूँ। सभी प्रयोगों में यह घमंडी अभिमानी ठीठ लोगों को संदर्भित करता है जो भगवान या बुद्धिमान या सत्य की उपेक्षा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस बात पर दृढ़ हूँ कि उसने भगवान से उसे ढीठ लोगों से दूर रखने के लिए कहा था। दूसरे शब्दों में यह प्रभु की प्रार्थना के समान है, हमें प्रलोभन की ओर न ले जाएं। और वह जो कह रहा है वह यह है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, मैं उनकी कंपनी में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान मुझे उन लोगों से दूर रखें जो मुझे आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर देंगे। यह उनकी ओर से बहुत विनम्र प्रार्थना है। ठीक है, तो यह अनुवाद है। अब हम अनुवाद को हाथ में रखते हुए भजन की संरचना की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक सुपरस्क्रिप्ट है डेविड का भजन, फिर हमारे पास एक छंद है स्वर्ग परमेश्वर के ज्ञान को प्रदर्शित करता है जो उसे महिमा देता है। लेकिन स्वर्ग श्लोक 2 रात से रात तक ज्ञान प्रकट होता है इत्यादि, तो यह वास्तव में सृष्टि में प्रदर्शित ईश्वर की सर्वज्ञता का संदर्भ दे रहा है। फिर वह टोरा की प्रशंसा करता है जो ईश्वर की नैतिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है, तो वह भगवान के कानून और उसकी उत्कृष्टता की प्रशंसा कर रहा है। यह जीवन के विरुद्ध पुनर्जीवित करता है, बुद्धिमान बनाता है, हृदय को आनंदित करता है, आंखों को प्रबुद्ध करता है इत्यादि। फिर वह टोरा को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। उसके पास दोहरी प्रार्थना होगी, छिपे हुए पाप और उसे ढीठ लोगों से बचाना। टोरा और याचिका के बीच जानूस है जो वह श्लोक 11 में कहता है, इसके अलावा उनके द्वारा आपके सेवक को चेतावनी दी गई है। इससे एक याचिका दायर की जाएगी कि कानून के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी जाएगी, तो यह क्षमा और सुरक्षा के लिए उसकी याचिका की ओर ले जा रहा है। और जब वह कहता है तो उनके पालन में बड़ा प्रतिफल है। वह श्लोक 7 से 10 तक पीछे मुड़कर देख रहा है, जहां उसने टोरा रखने के पुरस्कारों को सूचीबद्ध किया है। तो सचमुच उसके पास उनको पालने में बड़ा सवाब है। फिर उनके द्वारा तेरे दास को चिताया जाता है और वह बिनती की ओर ले जाता है। जानूस में यह असामान्य बात नहीं है कि बी पद्य का सेठ उस बात का संदर्भ देता है जो पहले हुआ था और ए पद्य का सेठ उसका संदर्भ देता है जो उसके बाद आता है। यह जानूस छंदों में काफी सामान्य है, जैसा कि यहाँ होता है। इस बिंदु पर जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए वह यह है कि इन भजनों का क्या संबंध है। दूसरे शब्दों में, बयानबाजी में आप पूछते हैं, इसका तर्क क्या है? सृष्टि की प्रशंसा करने से लेकर टोरा की प्रशंसा करने तक हमारे अंदर यह आमूलचूल बदलाव क्यों आया है? हम उस रिश्ते को कैसे समझें? मैंने जो टिप्पणियां पढ़ी हैं, उनमें मुझे कुछ हद तक यह उपयोगी लगा कि वे एक छंद से दूसरे छंद में होने वाले बदलाव को नोट करते हैं। तो माइकल फिशबेन वक्ताओं की गतिविधि को नोट करते हैं, इसलिए कि पहले श्लोक में स्वर्ग बोल रहा है, दूसरे श्लोक श्लोक 7 से 10 में भगवान कानून के माध्यम से बोल रहे हैं, और फिर याचिका अनुभाग में भजनहार अंत में बोल रहा है। मुझे लगता है कि यह मददगार है। यह विशेष रूप से तर्क अनुरोध की व्याख्या नहीं करता है। यह बस है, 3 अलग अलग स्पीकर हैं, लेकिन इससे मुझे विशेष मदद नहीं मिलती है। यह एक अच्छा अवलोकन है। मुझे लगता है यह वहां है। मीनहोल्ड पर वह शब्द के संदर्भ में विषयों के परिवर्तन को नोट करता है। भगवान के बारे में शब्द हैं। वहां परमेश्वर का एक वचन है और परमेश्वर के लिए एक वचन है। मुझे यह उपयोगी लगता है कि यह ईश्वर और सृष्टि के बारे में एक शब्द है। यह ईश्वर और टोरा का एक शब्द है। लेकिन फिर जहां बात खत्म होती है वह यह है कि सृष्टि भी ईश्वर का एक शब्द है। लेकिन फिर भी वह उस भेद को टिप्पणी के लायक बनाता है। तब आपके पास परमेश्वर को वचन है। मैंने सोचा कि क्रेग ब्रॉयल्स ने अपनी टिप्पणी में गति के संकुचन को नोट करना उपयोगी समझा, अर्थात इसकी शुरुआत स्वर्ग से होती है, आकाश की विशालता से, फिर यह और अधिक संकीर्णता से कानून की ओर बढ़ती है, और फिर इससे भी अधिक संकीर्णता से उपासक की ओर बढ़ती है। तो वह एक ठेकेदारी आंदोलन देखता है। वह सभी के निर्माता एल से लेकर आईएम या प्रभु तक, जो इज़राइल की वाचा का पालन करने वाला भगवान है, तक ईश्वर के नामों में एक अनुबंध आंदोलन देखता है। तब दाऊद उसे कहता है, मेरी चट्टान और मेरा छुड़ाने वाला, अपना बचाने वाला परमेश्वर। और फिर मुझे वह मददगार लगता है। हालांकि छंदों के बीच होने वाली गतिविधियों के इन दिलचस्प अवलोकनों के बावजूद मुझे अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि भजन का तर्क क्या है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि श्लोक 1 और 2 ईश्वर की स्तुति, उनके रहस्योद्घाटन और सृजन के लिए ईश्वर की स्तुति, और उनके कानून में ईश्वर की स्तुति से एकजुट हैं। मुझे लगता है कि यह सार्थक है। फिर मैं इमैनुएल कांट से उद्धृत करता हूं कि कांट एक प्राकृतिक रहस्योद्घाटन से चकित है। वह प्राकृतिक रहस्योद्घाटन को 2 भागों में विभाजित करता है जो उसे आश्चर्यचकित करता है। एक तो वह अपने आसपास की सृष्टि से आश्चर्यचकित है। वह अपने भीतर के विवेक द्वारा स्वाभाविक रहस्योद्घाटन से चकित है। इसलिए मैं कहता हूं कि इमैनुएल कांट ने सामान्य रहस्योद्घाटन में विवेक को भी शामिल किया और स्वर्ग की गवाही और उसके विवेक दोनों ने उसे विस्मय से भर दिया। वह कहते हैं, 2 चीजें मन को नित नई और बढ़ती प्रशंसा और विस्मय से भर देती हैं। जितना अधिक बार और लगातार हम उन पर विचार करते हैं, मेरे ऊपर तारों से भरा आकाश और मेरे भीतर का नैतिक कानून। मैं उनमें से किसी की भी खोज या अनुमान नहीं लगाता हूँ, मानो वे मेरी दृष्टि के क्षितिज से परे छुपी हुई अस्पष्टताएं या अपव्यय हों। मैं उन्हें अपने सामने देखता हूँ और तुरंत उन्हें अपने अस्तित्व की चेतना से जोड़ देता हूँ। व्यावहारिक कारण की अपनी आलोचना में वह इन दो खुलासों से बच नहीं सके। लेकिन वह बोलता नहीं है, वह कानून की बात करने के बजाय अंतरात्मा की बात कर रहा है, जैसा कि भजनों में किया गया है। मुझे लगता है कि शायद ज्ञान साहित्य में अपने काम के कारण मैं सृजन और कानून के बीच एक संबंध देखता हूँ। अर्थात जैसा कि मैंने कहा, मैं भजन पाठ्यक्रम में सोचता हूँ कि आप किसी भी चीज को तब तक निश्चित रूप से नहीं जानते जब तक आप नहीं जानते, या पूरी तरह से जब तक आप किसी चीज को व्यापक रूप से नहीं जानते। इसलिए उदाहरण के लिए मैं चित्रण का उपयोग करता हूँ। हम सोचते थे कि पानी पर बांध बनाना अच्छा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह बुरा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पारिस्थितिकी के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। लेकिन अब जब हमने पानी पर बांध बनाने के परिणाम देख लिए हैं और यह कैसे पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो जिसे हमने अच्छा समझा वह बुरा निकला। मुद्दा यह है कि हमारे पास व्यापक ज्ञान नहीं था। यह जंगल की आग की तरह, हम सोचते थे कि जंगल की आग हमेशा बुरी होती है। हम सभी जंगल की आग को रोकना चाहते थे। अब हम जानते हैं कि वे जंगल के चालू जीवन के संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक हैं। तो जिसे हम बुरा समझते थे वह अब अच्छा है। क्या मैंने वेस्टमिंस्टर का उदाहरण आप सभी के साथ साझा किया? मुझे नहीं लगता कि इस कक्षा में आपके पास है। हाँ, मैंने नीतिवचन पाठ्यक्रम में किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे यहाँ फिर से साझा करना उचित है, क्योंकि यह भजन का तर्क है। तो इसका मेरा पसंदीदा उदाहरण, व्यापक ज्ञान के बिना आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, वेस्टमिंस्टर सेमिनरी में मेरा अनुभव था। वेस्टमिंस्टर में परिसर में सबसे अच्छी इमारत पुस्तकालय है। यह एक अद्भुत पुस्तकालय है और इसे एक घाटी की ओर देखते हुए बनाया गया है। इसमें सबसे अच्छा आयोजन स्थल है, सबसे अच्छी सुविधाएं हैं। सभी संकाय कार्यालय पुस्तकालय के केंद्र के आसपास ही बनाए गए हैं। यह शोध के लिए एक बेहतरीन पुस्तकालय है। यह परिसर का गौरव है। खैर, जब मैं 1986 और 1991 के बीच वहां पढ़ाता था, तो वह ऐसा समय था जब छात्र करियर परिवर्तन के दौर में थे। पहले हमारे अधिकांश छात्र सीधे कॉलेज से निकलते थे, लेकिन अब हमें अधिक उम्र के छात्र मिल रहे थे जिनका पहले से ही कोई करियर था। उन्हें अपना करियर सार्थक नहीं लग रहा था और इसलिए वे अपना करियर बदल रहे थे और मंत्रालय में जा रहे थे। हमारे पास एक ऐसा छात्र था जो भूविज्ञानी था और हंट्सविले, अल्बामा में नासा के लिए काम करता था। उनकी विशेषज्ञता रेडॉन गैस को मापना था। जब वे हंट्सविले से फिलाडेल्फिया चले गए, तो उनकी पत्नी ने स्थानीय एबिंगडन अस्पताल में एक नर्स आरएन के रूप में एक पद हासिल किया। एक भूविज्ञानी के रूप में उनके प्रशिक्षण ने उन्हें सुझाव दिया कि वह क्षेत्र रेडॉन गैस से भरा हो सकता है। इसलिए वह एक सुबह रेडॉन गैस को मापने के लिए अपना उपकरण पुस्तकालय में ले आया और उस दिन दोपहर में इसे अस्पताल में स्थापित करने का इरादा रखता था। लेकिन चूंकि वह पहले से ही वहां था, उसने फैसला किया कि वह एक पुस्तकालय के तहखाने में रेडॉन गैस को मापेगा। उसके माप को समझने के लिए आपको विभिन्न वातावरणों में रेडॉन गैस की मात्रा के बारे में थोड़ा जानना होगा। तो आम तौर पर वातावरण में 4 पिकोक्यूरीज होती हैं। यह एक नानी का हजारवां हिस्सा है, हजारों हजार। विभिन्न 4 पिकोक्यूरीज वायुमंडल में हैं, रेडॉन गैस की 4 पिकोक्यूरीज। यदि आप एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीते हैं, आप एक चेन स्मोकर हैं, तो आप 200 पिकोक्यूरी रेडॉन गैस ग्रहण करेंगे। यदि आप यूरेनियम खदान में काम करते हैं, तो आप 400 सांस लेते हैं, जो सामान्य वातावरण की तुलना में 100 गुना अधिक है। आपको 400 मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि यूरेनियम खनिकों को हर तीसरे साल एक साल की छुट्टी लेनी पड़ती है ताकि शरीर डिटॉक्स हो सके और सभी जहरीली गैसों से छुटकारा मिल सके। खैर, उन्होंने एक पुस्तकालय में माप स्थापित किया और इसमें 4000 पिकोक्यूरीज मापी गईं। तो यह 100 गुना था, वह क्या है? यूरेनियम खदान से 100 गुना ज्यादा। यदि यह सटीक होता तो यह पृथ्वी ग्रह पर रेडॉन गैस की उच्चतम सांद्रता में से एक होता। यही हमारी लाइब्रेरी थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने हंट्सविले में नासा को फोन किया और उन्हें अपनी रीडिंग बताई और वे सबसे उत्कृष्ट माप लेकर आए जहां आप गैस मापते हैं, चाहे वे उस उपकरण को कुछ भी कहें। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे मापा और उन्होंने उसके पढ़ने की पुष्टि की। यह 4000 पिकोक्यूरीज थी। अगले दिन जब मैं अपने कार्यालय गया, तब तक मुझे नहीं पता था कि यह सब चल रहा है। तो दरवाजों और खिड़कियों पर काला और पीला टेप लगा हुआ था, दूर रहें, खतरा, घातक। और यहां मेरा कार्यालय था और यह यूरेनियम खदान से 1000 गुना 100 गुना अधिक था। और इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि पुस्तकालय बनाने वालों ने सोचा कि उन्होंने सबसे अच्छा स्थान चुना है, लेकिन क्योंकि उनके पास व्यापक ज्ञान नहीं था, उन्होंने पृथ्वी पर सबसे खराब स्थान चुना। लगभग इसलिए व्यापक ज्ञान के बिना आपको कभी भी पूर्ण निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बेशक सवाल उठता है कि जब उन्होंने वेस्टमिंस्टर में स्थिति का सामना किया तो उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या किया। खैर, भूवैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पुस्तकालय के ठीक नीचे पृथ्वी की गहराई में 40 मील की दूरी पर एक दरार थी और गैस इस दरार के माध्यम से हमारी लाइब्रेरी में उत्सर्जित हुई। या फिर चट्टानें खड़ी थीं और वे किताब के पन्नों की तरह टूटकर गिर रही थीं और इस रेडॉन गैस का उत्सर्जन कर रही थीं। यह वही है जो मैंने अखबार में पढ़ा जब भूवैज्ञानिकों ने स्थिति को समझाने की कोशिश की। खैर, जिस तरह से उन्होंने समस्या को हल किया वह यह है कि उन्होंने लाइब्रेरी के कोने पर पाइप लगा दिए। फिर उनके पास बेसमेंट की दीवार के साथ चलने वाली फ्लू की घटना थी और फिर लिफ्ट के पीछे चलने वाली फ्लू चिमनी थी। और फिर उन्होंने हवा निकालने के लिए शीर्ष पर एक एयर फैन, एक एयर शाफ्ट फैन लगाया। और इसलिए उन्होंने समस्या का समाधान कर लिया है। उन्होंने जो सोचा था कि यह एक बड़ी समस्या होगी, वास्तव में उन्होंने $15,000 में उस समस्या का समाधान कर दिया, जिससे मदरसा को बड़ी राहत मिली। और इस प्रकार उन्होंने सारी जहरीली हवा हवा में प्रवाहित कर दी। हाँ, खैर, मेरा मतलब है, यह किसी पुस्तकालय में केंद्रित किए बिना वैसे भी वहां चला गया होता। मुझे लगता है कि यह उन 4 पिकोक्यूरीज के स्रोतों में से एक है जो आम तौर पर हवा में होती हैं। तो लेकिन यह एकाग्रता नहीं है। हाँ, तो किसी भी मामले में मैं उस तरह का संबंध देखता हूं कि क्योंकि भगवान के पास व्यापक ज्ञान है, स्वर्ग उनकी महिमा की घोषणा कर रहा है। आप उसके व्यापक ज्ञान को सूर्य में देख सकते हैं जो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, क्योंकि वह पूरी पृथ्वी को देखता है। इसलिए उन्हें पूर्ण ज्ञान है और इसलिए उनका कानून हमारे सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि वह इसे समग्र रूप से देखते हैं। इसलिए जब तक आप चीजों को समग्र रूप से नहीं देखते, आप उन्हें कभी भी वास्तव में स्पष्ट या पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। और यही ज्ञान साहित्य का तर्क है। आप अय्यूब की ज्ञान की महान कविता में उस प्रकार का तर्क देख सकते हैं। अय्यूब 28 में आप देख सकते हैं कि ऋषि इसी तरह सोचते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह संपूर्ण निर्देश ज्ञान साहित्य का हिस्सा है। अय्यूब 28, हमारे पास अय्यूब या अय्यूब के लेखक की यह कविता है जिसमें वह रहस्योद्घाटन के अलावा ज्ञान और ज्ञान की दुर्गमता की प्रशंसा करता है। तो वह अय्यूब 28:12 में कहता है, लेकिन बुद्धि कहाँ पाई जा सकती है, समझ कहाँ रहती है, कोई भी प्राणी इसका मूल्य नहीं समझता, यह जीवितों की भूमि में नहीं पाया जा सकता। गहरा कहता है कि यह मुझ में नहीं है, समुद्र कहता है कि यह मेरे साथ नहीं है, इसे बेहतरीन सोने से नहीं खरीदा जा सकता और न ही इसकी कीमत चांदी से तौली जा सकती है, इसे ओपीर के सोने, बहुमूल्य गोमेद या लापीस लाजुली से नहीं खरीदा जा सकता, न तो सोना और न ही क्रिस्टल इसकी तुलना कर सकते हैं, नहीं यह सोने के गहनों के लिए हो सकता है, मूंगा और जैस्पर उल्लेख के योग्य नहीं है, बुद्धि की कीमत माणिक से भी अधिक है, कुश के पुखराज की तुलना उससे नहीं हो सकती, इसे शुद्ध सोने से नहीं खरीदा जा सकता, तो फिर बुद्धि कहां से आती है, समझ कहां रहती है। यह हर जीवित प्राणी की आंखों से छिपा हुआ है, यहां तक कि आकाश के पक्षियों से भी छिपा हुआ है, जो पृथ्वी पर मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक दूर तक देख सकते हैं। विनाश और मृत्यु कहते हैं, इसकी तो केवल अफवाह ही हमारे कानों तक पहुंची है। अब ध्यान दें, परमेश्वर इसका मार्ग समझता है, केवल वही जानता है कि वह कहां रहता है, क्योंकि वह पृथ्वी के छोर को देखता है, वह स्वर्ग के नीचे सब कुछ देखता है। दूसरे शब्दों में, उसके पास व्यापक ज्ञान है। जब उसने हवा की ताकत स्थापित की और पानी को मापा, जब उसने बारिश के लिए आदेश दिया और सूरज और तूफान के लिए रास्ता बनाया, तब उसने बुद्धि को देखा, उसका मूल्यांकन किया, उसकी पुष्टि की, उसका परीक्षण किया, और उसने मनुष्य जाति से कहा, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अथ केवल ईश्वर के पास ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि केवल ईश्वर ही सब कुछ देखता है। इसलिए क्योंकि उसके पास व्यापक ज्ञान है, वह बिल्कुल बोल सकता है और कह सकता है, भगवान का भय, भगवान का रहस्योद्घाटन और उसके प्रति समर्पण, यही शाश्वत जीवन के तरीके से जीने का कौशल है। फिर से आपके पास नीतिवचन अध्याय 30 में अगुर द्वारा प्रस्तुत किया गया वही सत्य है। यदि आप मेरे साथ वहां जाना चाहते हैं, और वह उसी चीज से जूझ रहा है, मेरे पास आपके नोट्स में अध्याय 30 के पृष्ठ 330 पर श्लोक 1-6 तक इसकी रूपरेखा है। यह आगुर की ज्ञान मीमांसा है, उनके ज्ञान का स्रोत है कि आपके पास सत्य कैसे है, आपके पास ज्ञान कैसा है। वह 5 स्वीकारोक्ति करता है। वह अध्याय 30 से शुरू करता है, ये जाका के पुत्र अगुर की बातें हैं। वह एक भविष्यवक्ता के साथ साथ एक ऋषि के रूप में भी बोलते हैं। यह एक प्रेरित कथन है। इस आदमी का प्रेरित कथन उसके बेटे को सिखाया जा रहा है। वह स्वीकारोक्ति से शुरू करता है, और मैं इसे अपनी अज्ञानता के बारे में यहां रख रहा हूं। यह एक सारांश है। इसकी शुरुआत उसके यह कहने से होती है, हे भगवान, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं जीत सकता हूं। मेरे पास यहां अनुवाद का बचाव करने का समय नहीं है। मैं नीतिवचन अध्याय 15-30 की पुस्तक पर अपनी टिप्पणी में इसका बचाव करता हूं। आप इस अनुवाद का बचाव देख सकते हैं। हे भगवान, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं प्रबल हो सकता हूं। निश्चित रूप से मैं केवल एक जानवर हूं, आदमी नहीं। मुझ में मानवीय समझ नहीं है। मैंने न तो ज्ञान सीखा है और न ही पवित्र का ज्ञान प्राप्त किया है। कौन स्वर्ग तक गया और नीचे आया? किसके हाथों ने हवा को इकट्ठा किया है? जल को किसने लबादे में लपेटा है? पृथ्वी के सभी छोरों को किसने स्थापित किया है? इसका नाम क्या है? उनके बेटे का नाम क्या है? निश्चित रूप से आप जानते हैं, भगवान का हर शब्द निर्दोष है। वह उन लोगों के लिए ढाल है जो उसमें शरण लेते हैं। यहां अपनी ज्ञान मीमांसा में वह अपनी पांच स्वीकारोक्तियां करता है। उनकी पहली स्वीकारोक्ति उनकी अज्ञानता है। मुझे ज्ञान नहीं है। श्लोक दो, निश्चित रूप से मैं केवल एक जानवर हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। मैं वैसा नहीं हूं जैसा एक इंसान को होना चाहिए। मैं आदमी नहीं हूं। मुझ में मानवीय समझ नहीं है। मैंने न तो ज्ञान सीखा है और न ही पवित्र का ज्ञान प्राप्त किया है। तो वह अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेता है कि उसे ज्ञान नहीं है। दूसरे, वह कुछ ज्ञान रखने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता है, क्योंकि वह संपूर्ण ज्ञान देखने के लिए स्वर्ग तक नहीं जा सकता है। कौन स्वर्ग तक गया और नीचे आया? और सृष्टि का पालन कौन करता है? किसके हाथों ने हवा को इकट्ठा किया है? किसने पानी को लबादे में लपेटा है? और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर चार ऐसे मेल खाते हुए कौन स्वर्ग तक गया है और क्षैतिज अक्ष पर नीचे आया है? पृथ्वी के सभी छोरों को किसने स्थापित किया है? और इसलिए वह स्वीकार कर रहा है कि जब तक आप इसे स्वर्ग से समग्र रूप से नहीं देख सकते और पृथ्वी के छोर को नहीं देख सकते, आपको निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन अब वह कबूल करता है कि भगवान के पास वह ज्ञान है जो स्वर्ग तक चला गया है। और वह कहता है, उसका नाम क्या है? भला वह कौन है जो स्वर्ग में था और जिसने पृथ्वी की छोर को स्थापित किया? वह कौन है जो जल से, बादलों से सृष्टि का पालन करता है? जाहिर है, नाम आई एम है। यह इसराइल का भगवान है। वह परमेश्वर है जिसके पास यह ज्ञान है। अगली चौथी स्वीकारोक्ति में वह पूछता है, उसके बेटे का नाम क्या है? और निस्संदेह नीतिवचन की पुस्तक में पुत्र ही शिष्य है। भगवान कौन पढ़ाते हैं? बेटा कौन है? वह भगवान का शिष्य है। खैर, पुराने नियम में पुत्र इसराइल के लोग हैं। निर्गमन अध्याय चार में उन्हें ईश्वर के पुत्र कहा गया है। मुझे लगता है कि यह व्याख्या बारूक की अपोक्रिफल पुस्तक के अध्याय तीन छंद 29-36 में मान्य है। वह वही सवाल उठाते हैं, कौन स्वर्ग तक गया और उसे अर्थात बुद्धि को ले आया और उसे बादलों से नीचे उतार लाया? किसने समुद्र पार जाकर उसे पाया और उसे शुद्ध सोना मोल लेगा? कोई भी उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानता या उस तक पहुंचने वाले रास्ते के बारे में चिंतित भी नहीं है। परंतु जो सब बातें जानता है वही उसे जानता है। उसने अपनी समझ से उसे ढूंढ लिया। जिसने प्रेवी को सर्वदा के लिए तैयार किया, उसने उसे चौपायों से भर दिया। यह हमारे भगवान हैं। उनकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। उसने ज्ञान का पूरा मार्ग खोज लिया और इसे अपने सेवक याकूब को, अर्थात इसराइल को, जिससे वह प्रेम करता था, दे दिया। तो वहां वह कबूल कर रहा है कि जिसके पास यह ज्ञान है वह इसराइल का ईश्वर है और जिसे उसने यह ज्ञान और यह रहस्योद्घाटन दिया है, जैसा कि पॉल रोमन की पुस्तक में तर्क देगा, वह इसराइल के लोग हैं। पांचवा अंगीकार जो वह करने जा रहा है वह श्लोक पांच में है कि यह अच्छा है। यह ज्ञान ईश्वर के पास है जिसने यह सब स्थापित किया है और यह सब जानता है, परंतु उसे इसे ज्ञात कराना है। वह कहते हैं कि भगवान का हर शब्द निर्दोष है। वह उन लोगों के लिए ढाल है जो उसकी शरण में आते हैं। तो पांचवी स्वीकारोक्ति यह है कि ईश्वर ने अपने प्रकट वचन में स्वयं को प्रकट किया है। खैर, यह इस बात का परिचय है कि मैं समझता हूं कि छंद किस प्रकार संबंधित हैं। चूंकि ईश्वर के पास व्यापक ज्ञान है, वह स्वर्ग में रहते हुए सब कुछ देखता है, उसने स्वर्ग की रचना की। वे उसके ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए वह उस कानून के माध्यम से निश्चितता के साथ बोलने में सक्षम है जो हमारे पास भजन के बाकी हिस्सों में है। आप बहुत सी पद्धतियों में एक प्रश्न पूछते हैं, भजन 19 का उपयोग किया जाता है और छंदों के बीच संबंध सामान्य रहस्योद्घाटन, विशिष्ट रहस्योद्घाटन और फिर दोनों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। क्या यह कनेक्शन देखने का वैध तरीका है? हाँ, मैं पृष्ठ पर उस पृष्ठ का उल्लेख करना चाहता था जहां अनुवाद से पहले पृष्ठ पर नया पृष्ठ 329, 326 पुराना पृष्ठांकन था। मैं छंदों के एकीकृत तर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तरह से यह हो सकता है, यह दुनिया के सामने स्वयं के रहस्योद्घाटन के दो मौलिक प्रकारों के लिए ईश्वर की प्रशंसा है, सृष्टि में प्राकृतिक रहस्योद्घाटन और शब्द में विशेष रहस्योद्घाटन। तो मुझे लगता है कि यह बहुत मान्य है, लेकिन यह वास्तव में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है कि आप ये शब्द प्रशंसा क्यों कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कुछ गहरा है कि जिस तरह से ऋषि सोचते हैं, उसी पर मैं बहस कर रहा हूँ, किसी भी कीमत पर। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 26 बुद्धि भजन शैली है।